धन्यवाद। धन्यवाद। सुनिए, किसी परिस्थिति को देखकर या सुनकर ही मनुष्य उसके बारे में चिंतन मनन करता है और अपने इस शरीर का विचार न करते हुए उसके वशीभूत हो जाता है। इसी तरह मानसिक संतुलन द्वारा वह रात में भिन्न शरीरों तथा भिन्न परिस्थितियों में रहकर सपना देखता है और अपनी वास्तविक स्थिति को भूल जाता है। उसी प्रक्रिया के अंतर्गत वह अपना वर्तमान शरीर त्याग कर दूसरा शरीर ग्रहण करता है तथा देहांतर प्राप्ति। तात्पर्य, विस्तृत तात्पर्य पूर्वक सुनेगा, तकरीबन 3 पेज तात्पर्य है। इस श्लोक में आत्मा के देहांतर की स्पष्ट व्याख्या हुई है। मनुष्य कभी कभी अपने वर्तमान शरीर को भूल जाता है और अपने बचपन के शरीर के विषय में विगत शरीर के बारे में सोचता है कि वह किस तरह खेलता कूदता और बातें इत्यादि किया करता था। जब भौतिक शरीर काम के लायक नहीं रह जाता तो मिट्टी बन जाता है। तुम्हारी माटी हो, तुम माटी हो और अंत में माटी में मिल जाओगे, बाइबल से। तुम अच्छा, किंतु जब शरीर में से 5 भौतिक तत्वों पृथ्वी जल अग्नि वायु तथा आकाश में मिल जाता है तो मन तब भी कार्य करता रहता है। मन सूक्ष्म तत्व है जिससे शरीर बनता है, जैसा कि हम अपने स्वप्न में और जग जाने पर चिंतन के समय अनुभव करते हैं। हमें यह समझना होगा कि मानसिक चिंतन की विधि ऐसे नए नए प्रकार के शरीर उत्पन्न करती है जिनका वास्तविक अस्तित्व ही नहीं होता। यदि हम मन की प्रकृति मनोरथेन तथा इसके सोचने अनुभव करने तथा चाहने को समझ सकें तो हम यह आसानी से समझ सकते हैं कि किस तरह मन से विभिन्न प्रकार के शरीर उत्पन्न होते हैं। अतएव कृष्ण भावनामृत आंदोलन दिव्य कार्यकलापों की ऐसी विधि प्रस्तुत करता है जिससे मन कृष्ण संबंधी कार्यों में पूरी तरह लीन रहता है। आत्मा की उपस्थिति चेतना द्वारा अनुभव की जाती है और मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी चेतना को शुद्ध करके भौतिक से आध्यात्मिक बना ले, अथवा दूसरे शब्दों में कृष्ण भावनामृत में परिणत कर ले। कृष्ण भावनामृत के बिना मनुष्य की चेतना सदैव नश्वर वस्तुओं में लीन रहती है। इसीलिए कृष्णा ने भगवद्गीता के 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में हर एक के लिए संस्तुति की है। हर एक के लिए मन्मना भव मद भक्तो मद्याजिमाम नमस्कुरु। मनुष्य को चाहिए कि वह सदैव कृष्ण के विचारों में लीन रहे, उन्हीं का भक्त बने, सदा उनकी सेवा करे और उन्हें ही सबसे बड़ा मानकर पूजे तथा नमस्कार करे। भौतिक जगत में मनुष्य किसी न किसी बड़े व्यक्ति का दास होता है और आध्यात्मिक जगत में हमारी वैधानिक स्थिति परब्रह्म की सेवा करने की है। यही श्री चैतन्य महाप्रभु का उपदेश है, जीवे स्वरूप हरे कृष्ण नित्य दास, चैतन्य चैतामृत मध्य लीला 20वां अध्याय श्लोक संख्या 108। कृष्ण भावनामृत में कार्य करना जीवन की सिद्धि और योग की सर्वोच्च सिद्धि है। भगवान कृष्ण भागवत गीता के 6 अध्याय के 47वें श्लोक में कहते हैं, योगिनाम अब सर्वेशा मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मतः। समस्त योगियों में जो अत्यंत श्रद्धापूर्वक दिव्य प्रेमा भक्ति में मेरी पूजा करते हुए सदैव मुझ में ही रहता है, वह योग में मुझसे घनिष्ठता पूर्वक संयुक्त होता है और सर्वोच्च होता है। संकल्प तथा विकल्प बीच में डगमगाने वाले अर्थात किसी को स्वीकार करने और फिर उसी को अस्वीकार करने वाले की दशा मृत्यु के समय एक भौतिक शरीर से दूसरे आत्मा, हाँ मैं वही शरीर शरीर से दूसरे ओके आत्मा के साथ ओके शरीर में दूसरे शरीर दूसरे में आत्मा के स्थानांतरण में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यमयम वापि स्मरण भावं त्यजन्ते अन्ते कलेवरं तम तम वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावयतः। शरीर त्यागते समय मनुष्य जैसी दशा का स्मरण करता है उसे अवश्यमेव वैसी ही दशा प्राप्त होती है। भागवत गीता 8वां अध्याय श्लोक संख्या 6। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन को भक्ति योग पद्धति में प्रशिक्षित करे, जैसा कि सदा कृष्ण भावनामृत में रहने वाले महाराज अम्बरीश ने किया था। सवय मना कृष्ण पदारविंदयो, मनुष्य को चाहिए कि 24 घंटे अपने मन को कृष्ण के चरण कमलों पर स्थित रखें। ऐसा करने से अन्य इंद्रियों के कार्यकलाप भी कृष्ण की सेवा में लगे रहेंगे। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते, शुद्ध इंद्रियों द्वारा इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश की सेवा करना भक्ति है। जो लोग निरंतर भक्ति में लगे रहते हैं वे प्रकृति के भौतिक गुणों से ऊपर दिव्य पद पर स्थित होते हैं, जैसा कि कृष्ण ने भागवत गीता के 14वें अध्याय के 26वें श्लोक में कहा है, माम चयो विचारेना भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतित्ते तान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो पूर्णतया भक्ति में लगा रहता है, जो किसी भी परिस्थिति में च्युत नहीं होता, वह तीनों गुणों को तत्क्षण पार करके ब्रह्म के स्तर पर आ जाता है। मनुष्य को वैदिक साहित्य से विशेष रूप से जब वैदिक ज्ञान का नवनीत भगवत गीता यथारूप में प्रस्तुत किया गया है, सफलता की कुंजी प्राप्त कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट पैराग्राफ, बहुत सारे पैराग्राफ यानी कि बहुत सारे विषय प्रभुपाद ने छेड़े हैं अलग अलग। क्योंकि मन अंततोगत्वा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के द्वारा नियंत्रित होता है, अतएव अपस्मृति ही शब्द महत्वपूर्ण है। अपनी ही पहचान को भूल जाना अपस्मृति है। वह अपस्मृति भगवान द्वारा नियंत्रित हो सकती है क्योंकि यह अपस्मृति भगवान द्वारा नियंत्रित हो सकती है क्योंकि भगवान कहते हैं, मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, मुझे से स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति उत्पन्न होते हैं। कृष्ण मनुष्य को अपनी असली स्थिति भूलने न देकर मनुष्य के मृत्यु के समय उसकी मूल पहचान को जागृत कर सकते हैं। यद्यपि मन चंचल होता है, भले ही मृत्यु के समय मन ठीक से काम न करे, कृष्ण अपने भक्तों को अपने चरण कमलों में शरण देते हैं। तो वो चलिए आगे देखते हैं। अतः जब भक्त अपना शरीर त्यागता है तो मन उसे दूसरे भौतिक शरीर में नहीं ले जाता। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नहीं थी मामेति, प्रत्युत भक्त को कृष्ण ऐसी जगह ले जाते हैं जहां वे अपनी लीलाएं करते हैं मामेति, जैसा कि हम पिछले श्लोकों में बतला चुके हैं। अतः मनुष्य की चेतना सदा कृष्ण में लीन रहे तो उसका जीवन सफल हो जाएगा, अन्यथा मन आत्मा को किसी अन्य भौतिक शरीर में ले जाएगा। यह आत्मा पिता के वीर्य में प्रस्थापित होकर माता के गर्भ में स्खलित होगा। वीर्य तथा रज से माता पिता के स्वरूप के अनुसार विशेष प्रकार का शरीर उत्पन्न करते हैं, और जब शरीर परिपक्व हो जाता है तो आत्मा उसमें प्रस्फुटित होता है और नवीन जीवन का सूत्रपात होता है। एक शरीर से दूसरे शरीर में आत्मा का के देहांतरण की विधि यही है, तथा देहांतर प्राप्ति ही। दुर्भाग्यवश अल्प बुद्धि वाले लोग ये सोचते हैं कि शरीर के लुप्त होने पर सब समाप्त हो जाता है। सारा संसार ऐसे मूर्खों तथा मूढ़ों द्वारा भ्रांत हो रहा है, किंतु भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 20 श्लोक में कहा गया है, न अन्यते अन्य माने शरीर है, शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा नष्ट नहीं होता, यह आत्मा दूसरा शरीर ग्रहण करता है। विस्तृत तात्पर्य है, और जैसे यहाँ पर कई पंक्तियां हैं, पैराग्राफ हैं, और मैं यहाँ पर देख सकते हैं हम कि मन मन को मन 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 का स्वभाव, फिर कृष्ण भावनामृत में मन लगाना, फिर मन के बाद प्रभुपाद, हालांकि ये मन के बारे में बात हो रही है, श्लोक भी ऐसा ही है, मगर उसके बाद फिर कृष्ण प्रभुपाद जो है उसको मन तक सीमित ना रखे और नीचे लेके आते हैं कर्म पे भी, यानी कि अकर्मणा वाचा मनसा जो है, तो कर्म, फिर कर्म एक पूरा अध्याय जो है उस तरीके से, और उसके बाद फिर ये करने से क्या होगा कि किस तरीके से प्रभुपाद यहाँ पे बातों बातों में ही बहुत ही एक बड़ा राज भी जो है यहाँ पर खोल रहे हैं कि अगर किसी की प्रभुपाद ने बीच में बोला था कि अगर मनुष्य मन जो है भगवान जो है जो ऐसे इस तरीके से जो ये सेवा करते हैं मेरी इंद्रियों को लगा के मन के साथ, तो वो डगमगाने नहीं देते भगवान उसको मृत्यु के समय। तो यहाँ पर जो तरीका जो बताया हुआ है, यानी कि खास तौर पर जो है जोर दिया गया है मृत्यु के समय जो जो साधक है जो भक्त है वो किस तरीके से जो है मृत्यु के माध्यम से जो है वो भगवत प्राप्ति करता है। और फिर यहाँ पर आखिरी जो पैराग्राफ है उसमें प्रभुपाद साफ कर रहे हैं ये जो ये पूरा आत्मा का ज्ञान मोटा मोटा जो है आत्मा का ज्ञान दिया जा रहा है। अब ये तो इसके पीछे इसकी पृष्ठभूमि क्या है, इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है, बैकग्राउंड ये है कि कंस ने जो है पकड़ा हुआ है देवकी को और वसुदेव जो है अब उसे ये श्लोक, अब आप कोई बड़ी अजीब बात लगेगी जिस वक्त जिस जमाने में हम जी रहे हैं जिस टाइम्स में हम जी रहे हैं, यहाँ तो अगर कोई किसी की गर्दन पकड़ते तो हम बोलेंगे छोड़ दो जाने दो छोड़ दो जाने दो, तो ठीक है ना, बोला ऐसा नहीं है, मगर आप देखें इसकी गहराई जो है वो ये है कि यहाँ पर सिर्फ ना तो ये कि उसको छोड़ दो मगर ये कि उसने उसको पकड़ा क्यों है, आखिरकार पकड़ा ही क्यों है। आप कह सकते जी वो आकाशवाणी हुई थी इसको मार दे, वो ऐसा ऐसा उसको मारने वाला आ जाएगा तो उसको मारने के लिए तैयार हो, हाँ, मगर ये सारे के पीछे राज के ये तो वजह है, ये तो वो ये वजह भी नहीं है, ये मैं बताऊ ये कहूंगा ये उसके लक्षण है, वजह कुछ और है, वजह ये है जिस वजह जिसका निवारण करने के लिए वसुदेव यहां पे बात कर रहा। अगला दो श्लोक भी यही है, वो है कि इस व्यक्ति को शरीर और आत्मा के भेद नहीं पता, जो असुर होता है उसको नहीं ये बात नहीं समझ आती, या उसको सरसरी तौर पर मालूम भी हो मगर उसके बारे में उसका कोई अपना अपना तजुर्बा या अपनी अपनी अनुभूति नहीं होती। इस वजह से क्योंकि अगर आप देखें है ना, क्योंकि किसी को भी जब जो ABCD शुरू होती है आध्यात्मिक जीवन में वो कहाँ से शुरू होती है, वो यही दो चादर से शुरू होती है ना, हाँ देहीन उसमें यथा दे, इसलिए जो है वसुदेव शुरू कर रहे कि देखो ऐसा है, आप सोचिए कि क्या मतलब क्या वसुदेव के गुण आप देखें धैर्य क्या होगा उनका, इसे कहते धीरज तत्रनम हुई थी वाकई में, तो ये व्यक्ति जो है वाकई में ये ज्ञान मतलब देने के लायक है कि उस स्थिति में भी जो है उनका संतुलन बना हुआ है और वो उनको ये ज्ञान दे रहे हैं। हालांकि शुरुआत में जब आप देखेंगे तो हर तरीके का इस्तेमाल उन्होंने किया है, सामदान दान भेद इस्तेमाल किया है, मगर सिर्फ सामदान दान भेद ही अगर वो इस्तेमाल करके छोड़ देते तो शायद जो है पूरी तरीके से सामने वाले के हित में नहीं होता, तो मगर तो जो एक ब्राह्मण और एक भक्त का जो गुण है वैष्णव का जो गुण है कि वो सबका हित चाहते हैं, तो देख पा रहे थे कि एक आदमी जो अपनी बहन को जो है गला काटने से बाज नहीं आ रहा, इसका मतलब उसको ये सब बताने का फायदा नहीं, उसको पहले उसके उसका उसका इलाज बहुत पीछे से होना पड़ेगा, करना पड़ेगा उसको, तो अभी यही उसको शायद ठीक नहीं है कि मैं भी मरूंगा एक दिन, आहनी आहनी भूतानी गच्छन्ति, ये मुझे उसको नहीं मालूम ये बात, तो इसलिए सबसे पहले उसको ये बताना जरूरी है देही नस्मिन। और इसीलिए यहाँ पर, और सिर्फ एक फिलॉसफी नहीं, वो उसको रोज देखिए यहाँ पर वसुदेव ये नहीं कर रहे कि फलाने वेदों में फलाने उपनिषद में जो है उन्होंने यूं कहा है, उन्होंने एक बहुत ही सरसरी तौर पर रोजाना इस्तेमाल होने वाले जो आदमी देख सकते अपनी आंखों से वो उदाहरण यहाँ पर दिया, कैसे कैसे जगह है जहां पर आप ये समझ सकते हैं, यानी कि एक आम आदमी बहुत आसानी से समझ सकता है वो शरीर नहीं, बहुत आसानी से समझ सकते, कब कब समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पर उन्होंने उदाहरण दिया सपने का, तो सपना अक्सर हम कब देखते हैं और जागते हुए, हाँ देखते हैं बिल्कुल, दिवास अग्निशमन का बिल्कुल, जिसको बेसिकली शेख चिल्ली के सपने देखना कहते हैं, जब आंखें खोल के आप जो है हाँ तो देखते हैं ना, तो बस तो जब ये सपना आप देख रहे हैं तो उस वक्त उसके अंदर जो भी हो रहा है आप उसका हिस्सा हैं या आप उसको आप देख रहे हैं, मगर आप वो नहीं है, बहुत 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 आसान सी चीज़ है, सोते हुए सोते हुए जब आप सो रहे हैं तभी भी आप, आपको नहीं पता होता कि मैं जिंदा हूँ, मगर आप जिंदा हैं, आप अलग हैं उससे, या एक्सट्रीम केस में जब हम मेडिकली आगे चले जाएं कोमा है तो आदमी जिंदा है मगर उसको ये नहीं पता वो शरीर के साथ उसका संपर्क नहीं है, तो ये आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस नियर डेथ एक्सपीरियंसेस ये तो चलो आगे कीजिए, ये लोगों को ज्यादा आकर्षित करती है, लोग ज्यादा इसके तरफ खींचते हैं सुन के, अच्छा ऐसा हुआ था, मगर वो उससे बहुत ज्यादा जमीनी तौर पर ये चीज रोज होती है, तो इसीलिए वो पहला जो पार्ट है एक 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 असुर को जो है सबसे पहला पार्ट देना यही जरूरी है कि तुम शरीर नहीं हो, ये असुर के लिए पहला लेसन है, ये भक्त के लिए पहला लेसन नहीं है, ये एक असुर के लिए पहला लेसन है, अगर आप असुर को सबसे पहले सीधा भगवान से जोड़ने की कोशिश करोगे तो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि उसको भी ये नहीं पता, वो आप उसको भगवान से जोड़ने की कोशिश कर रहे हो यानी कि आप उसको एक, मगर जब आप जब जोड़ते हैं तो जोड़ने के लिए दो होने की जरूरत है, एक अकेला आपस में नहीं जुड़ता, तो एक अगर भगवान है दूसरा वो क्या, उसका पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या है, तो इसीलिए उसको पहले शरीर बताना जरूरी है, तुम शरीर नहीं हो, तो इसीलिए और यहाँ पर जैसे फिर बता रहे हैं, और जैसे शुरुआती तौर पर जो है प्रभुपाद ने पहले पैराग्राफ में जैसे प्रभुपाद ने बताया कि जब आदमी मर जाता है तो उसके वो पांचों जो धातु है जो स्थूल धातु है वो पांचों तत्वों में मिल जाते हैं, मगर सूक्ष्म धातु है, अब सूक्ष्म धातु क्यों नहीं मिल जाता, सूक्ष्म तत्व भी तो होते हैं, अगर पांच धातुओं से ये दुनिया बनी है तो दुनिया के जो आवरण है वो बाकी तीनों धातु से बने, वहां क्यों नहीं मिल जाता, हाँ वो मिलाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, वो मिलाने के लिए जो वो इतना आसान नहीं है, उसके लिए फिर ये प्रोसेस है, उसके लिए उसके बाद फिर आपके पास कई प्रोसेस हैं, भक्ति के अलावा भी प्रोसेस हैं, आप मिला सकते हो अगर आपका यही लक्ष्य है तो मिलाना, ठीक है, मगर फिर इसीलिए प्रभुपाद ने ये बता के फिर आगे ले गए कि मकसद ये नहीं है कि आप ये पांच तत्व मिला दो आठों में मिला दो, मकसद ये है कि इस मन के साथ आप क्या कर सकते हैं, जब अभी आप फिलहाल आपके साथ है, एक तरीका है कि आप इस मन को जो है आप डिसइंटीग्रेट कर दीजिए योगिक प्रोसेस से, प्रभुपाद कहते नहीं इससे ज्यादा अच्छा है जो भगवान कह रहे, मन मना भव मत भक्तो मदियाजी मान लो मुश्कुर, आप मुझे दे दो, हाँ पहले मन दो, इसीलिए पहला पैराग्राफ मन पे, फिर दूसरा पैराग्राफ तन पे, ठीक है, इसीलिए ये है क्योंकि प्राधान्यता जो है उसकी है, ठीक है, तो उसके बाद फिर उसके बाद ये पूरा प्रोसेस आगे दिया, और फिर आखिरी में श्रील प्रभुपाद जो है ये बता रहे हैं कि आम आदमी के साथ क्या होता है, अपस्मृति पे प्रभुपाद यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो ये पूरा जो सिद्धांत है अपने आप में, तो वैसे भी जो भागवतम है तो भागवतम का भागवतम भागवत पाठ इसका जो लक्ष्य है, या जैसे क्योंकि ये अभी यहाँ पे वसुदेव प्रचार कर रहे हैं, इसका लक्ष्य सिर्फ भागवतम सुनना नहीं है, दरअसल ये जो है भगवान से कृष्ण तक पहुँचने का जरिया है, भगवान को अप्रोच करना, भागवतम दैट इज द आइडियल, और जैसे 10th कैंटो आप देखेंगे धीरे धीरे हम डायरेक्ट भगवान श्री कृष्ण के बारे में जो है हम इसके अंदर आगे देखेंगे। और खासतौर पर ये जो आत्मा का विषय है, प्रभुपाद के तात्पर्य आप इसी जगह पे, इन्हीं जगहों पे आप देखते, जैसे आप देखते हैं कि ज्यादा बढ़ जाता है ऐसे ऐसे जगहों पे जहाँ पर वो व्यावहारिक तौर पर जो है, जहाँ पर साधक को मुश्किलात आती है उसको आगे निकालने के लिए। तो क्यों? क्योंकि भक्ति वेदांत तात्पर्य श्रील प्रभुपाद का जो है लिखने का एक अभिप्राय जो है वो ये भगवान श्री कृष्ण, ये सेवा है प्रभुपाद की कि भक्ति वेदांत तात्पर्य द्वारा प्रभुपाद जो है भगवान श्री कृष्ण की ये सेवा कर रहे हैं कि वो कृष्ण और कृष्ण की शिक्षा, उसकी सुरक्षा करना, जैसे जय विजय होते हाउ टू प्रोटेक्ट दिस, ये ताकि ये ज्ञान जो है ये ठीक से इसका दुरुपयोग ना हो। तो ये बहुत जरूरी है कि स्टेप बाय स्टेप जो है चीज को हम आगे लेके जाएं। और जैसे यहाँ पे अभी आत्मा के स्तर का ये ज्ञान है, उसके बाद मतलब शरीर मन आत्मा, फिर इसके बाद यहाँ से सीधा भगवान है ना, और उनके साथ, तो ये भक्ति से संबंधित। तो ये क्यों? क्योंकि अक्सर आप देखेंगे लोग भगवान को क्यों, इन प्रॉपर एक सुबह एक मॉर्निंग वॉक में जो है शहर में जाते हुए श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि लोग कृष्ण से दूर क्यों भाग, क्यों जानते नहीं है भगवान को, इसलिए दूर भागते। अगर वो ये जान जाए कृष्ण कौन है तो कृष्ण की तरफ भागेंगे, तो प्रभुपाद की किताब कृष्ण की ओर। तो ये काम हमारा, ये हमारा रोल, ये तो भक्ति वेदांत तात्पर्य ये करता है कि वो भगवान से कृष्ण के इन शिक्षाओं को, भगवान से कृष्ण को शब्दों के माध्यम से जो है लिटरली तरीके से जो है ये सुरक्षा, ये पहरा देता है प्रैक्टिकल स्पीकिंग भगवान के लिए। और जो भक्तिवेदांत तात्पर्य को पढ़ने वाले, जो हम प्रभुपाद के अनुयायी, मैं समझता हूँ हमारा जो काम है वो इन्हीं तात्पर्यों को जिस जगह पे हम रह रहे हैं, जिस युग में हम रह रहे हैं, जिस माहौल में हम रह रहे हैं, उसके हिसाब से लोगों तक जो है उसको प्रस्तुत करना, जो उस जबान में, जिस जबान में वो समझ सकते। मैं इसको इस तरीके से, जो मेरी समझ है वो इस तरीके से है। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो है, आप देखेंगे भगवान सबके लिए समान है। क्यों? क्योंकि भगवान सभी का पालन करते हैं, पालनहार भगवान का एक नाम। मगर भगवान विशेष तौर पर सुरक्षा भक्तों की करते हैं, परित्राण है साधुना। तो पालन सबका है मगर सुरक्षा खास तौर पर जो है वो भक्तों के लिए है। तो ये आदान प्रदान प्रभात की तरफ से, ये आदान प्रदान ये है श्री प्रभात की तरफ से कि ये ठीक है, आप भक्तों के लिए ऐसा करते हैं, भक्त अपने तरफ से ऐसा जितना भगवान के लिए ये सेवा वो कर सकते हैं कि कोई भगवान के शिक्षाओं को तोड़े मरोड़े नहीं, और भगवान को शिक्षा तोड़े मरोड़ने का मतलब है भगवान को तोड़े मरोड़े नहीं। तो क्योंकि ये इसका जो मकसद है भागवतम, और जैसे हम धीरे धीरे हम आगे जा रहे हैं, तो ये धीरे धीरे आपको एक ये स्तर अपना पता करना कि जितना दो चीजें, एक जो मुझे शिक्षा मिल रही है और मैं उस शिक्षा ले रहा हूँ, और उस शिक्षा लेते लेते जब मैं उस शिक्षा को और क्या कहते हैं आत्मसात करते हैं, जब हम उसको अपनाते हैं और ज्यादा देते हैं, तो ग्रेजुअली वो एक ऐसे आपको धीरे धीरे खोलते खोलते एक ऐसे लेवल पे ले आएगा जहां पर आप ये फर्क कर पाएंगे कि डिफरेंट इसके अंदर के पहलू, डिफरेंट इसके अंदर के लेवल, एक जो आपके लिए है मगर ये भी साथ साथ आप देख पाएंगे कि ये शायद मेरे लिए नहीं है या मैं अभी इसके लिए नहीं तैयार हूं, मगर ये मुमकिन है और ये वजूद रखता है। मैं इसको खोल के बताता हूँ, ये पहली लग रही है। जैसे मान लीजिए भागवतम शुरू होता है, ठीक है, पहला स्कंद शुरू होता है, भागवतम के मुख्य वक्ता कौन है? मुख्य सुखदेव गोस्वामी। अब हम किसी भी व्यक्ति का जब हम शिक्षाएं पढ़ते हैं, ठीक है ना, तो हमें शिक्षा मिल रही है भागवतम के माध्यम से, तो हम सुखदेव गोस्वामी की शिक्षाएं पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, के द्वारा हम शिक्षाएं पढ़ रहे हैं, या भगवान श्री कृष्ण के द्वारा हम पढ़ रहे हैं भागवत गीता हम पढ़ रहे हैं। अब मुझे अब ये मुझे बताइए कि आप में से कौन है जो सुखदेव गोस्वामी को डील करने के लिए तैयार है, अभी सुखदेव गोस्वामी के साथ आदान प्रदान करने के लिए तैयार है, कौन कौन चाहेगा? ओके ओके, अब ठीक है, कुछ लोग हैं। अब मैं आपको सुखदेव गोस्वामी शुरू से शुरू करते हैं ना, सुखदेव गोस्वामी वो कैसे दिखते हैं? हाँ, दिगंबर या नंगा बोलो जो है, आप तो उसको मंदिर से अंदर नहीं घुसने दोगे, है कि नहीं? पॉसिबली भिखारी समझोगे, और 18 साल का लड़का है, और शायद पॉसिबली पागल, आप समझ रहे हैं? सो मैं एक शिक्षा अभी पढ़ रहा हूं, समझ रहा हूं, सीख रहा हूं, और उसके तहत जो है मेरे को एक दायरा मुझे मिला, मगर मैं कैसे समझूंगा कि मेरी शिक्षा ठीक जा रही है अगर मैं उस दायरे के बाहर की चीज भी वो चीज जो है मैं उसको रिकग्नाइज कर सकता, अगर मैं उसको हाँ रिकग्नाइज कर सकता कि हाँ ऐसा हो सकता। आप चलते चले ऐसे ही, आप भगवान श्री कृष्ण हैं, ठीक है ना, अब भगवान श्री कृष्ण बात कर रहे हैं यहाँ पर कि आप अपने मन को लगाइए, है ना, तो भगवान के मन में क्या चल रहा है ये पता करना आसान है? नहीं, थोड़ा मुश्किल है ना, मुश्किल है भगवान के मन में क्या, मगर जो चल रहा है वो भगवान के मन मर्जी हिसाब से चल रहा है, ये पता करना, ये आप इस ट्रेनिंग से ले सकते हैं, ये शुरुआती शुरुआत है। इस पे परिपक्व होने के बाद आप धीरे धीरे ये समझ सकते हैं, जब आपका भगवान के साथ संबंध बनता है कि भगवान के मन में क्या चल रहा है। इसी तरीके से भक्त, जैसे ये जो आप भक्त को सुन रहे हैं, जिनकी शिक्षा आप ले रहे हैं, उस व्यक्ति के साथ आदान प्रदान करना, नहीं तो आप क्यों ले रहे हैं उनसे? क्या आप नहीं चाहते कि 12 महाजन्म में से कोई आपको मिले, मगर आप चलते चले? फर्ज करें 4 कुमार आ जाए यहां पर, और मान लीजिए 1:30-2 बजे आ जाए दोपहर को, यहां कोई नहीं मिलेगा, वो बोलेंगे मुझे दर्शन करने हैं भगवान के, खोलो ना करके देखो आप, वो खड़े हैं ना सामने, हर मंदिर के सामने जय विजय इसलिए खड़े होते। बात समझ रहे हैं? दिस इज द आइडिया ऑफ इनकंसीवेबिलिटी, यानी कि जो आप शिक्षाएं आप पढ़ते हैं, 4 कुमार की शिक्षा आप पढ़ते हैं, तो उससे आप अपने एक आपको तैयार करते हैं फॉर द इनकंसीवेबल, ठीक है ना। चैतन्य महाप्रभु भक्तों के लिए पहला भक्तों की पहचान, पहली पहचान क्या कह रहे, 3 उदाहरण उन्होंने दिए हैं कैसे पहचानते हैं भक्तों का आचरण, कैसे भक्त कौन है आचरण से, बहुत छोटा सा, असत संग त्याग यही वैष्णवाचार, यही है ना डेफिनेशन। शिव जी का संग क्या होता है, कभी नोट किया? भूत प्रेत पिशाच ये वो, आप पास भी नहीं फटकना चाहोगे, ठीक है ना। वृत्तासुर का संग क्या था, ऐसा नहीं क्यों साथ रहता था, ही वॉज कमांडिंग आर्मीज, कमांडिंग का मतलब है जिसकी लॉयल्टी होती है उसी को आप कमांड कर सकते हैं, समझ रहे हैं? जबकि आप ये सारी शिक्षाएं पढ़ और उन्हीं सब की आप शिक्षाएं पढ़ रहे हैं, तो ये ग्रेजुअली डिवोटीज के लिए अनदर लेवल, जो दायरा आपको दिया गया है उस दायरे को आप ठीक से पालन करके आप उन लोगों को समझ सकते हैं, यही है ना आचार प्रचार, है ना। तो आप अभी उनका प्रचार पढ़ रहे हैं, पर आप उनके आचार को झेलने के लिए भी शायद तैयार नहीं है, मगर उसको झेले बगैर आप उनका संग करना की उम्मीद नहीं रख सकते, ठीक है ना। फिर तो हम तो कृष्ण के साथ संग करने चले, वो तो टोटली इनकंसीवेबल है, ठीक है। तो मगर ये इसीलिए ये महाजन ये नगता सपन था स्टेप बाय स्टेप, इसीलिए यहां पे वसुदेव ने शुरू किया, ये कृष्ण है, कैन नॉट डील विथ दिस, ये कैनॉट डील, क्योंकि उनका आचरण जो है वो इसकी परिपूर्णता है, इस शिक्षा की परिपूर्णता है। क्योंकि अब मुझे अटपटा लग रहा है, इसलिए अटपटा लग रहा है, ये सबूत है इसका कि मेरी ट्रेनिंग अभी अपूर्ण है, उनका कोई नहीं अटपटा कि आप किसी को भी ले लीजिए, आप यमराज का संग करना चाहेंगे, आप बताइए। वो नाम लेते आदमी डरता है, ठीक है ना, मगर ऐसे ही है सब। तो इनकंसीवेबिलिटी को रीच करना इस तरीके से, ये सिर्फ तभी से बहुत बुनियादी लगती है कि कंस को क्यों बोल रहे हैं बात है, तो बहुत ABCD है, नहीं यही बिल्डिंग ब्लॉक्स है। क्योंकि ये इसीलिए आप कई बार जो ये कहते हैं आप भगवान को डायरेक्ट अप्रोच मत करिए, उसका मतलब ये नहीं कि भगवान का अप्रोच मत करिए, हर किसी का जन्मसिद्ध अधिकार है भगवान का अप्रोच करना, मगर होगा क्या अप्रोच करके, इस तरीके से ना करके गलतफहमी भी हो सकती है। इस वजह से ये शिक्षा इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप दी गई है, मकसद ही भगवान को डायरेक्ट अप्रोच करने का जज्बा हमेशा रखें, मगर साथ ही साथ भगवान को और भगवान के जो वाणी है बेसिकली उसके माध्यम से एक पैरेलल ट्रैक रखें, वो जज्बा रखें और ये क्रिया रखें। देन आप कभी, अगर आप ये जज्बा छोड़ देंगे भगवान को करने, कुछ दिनों बाद ये रूखा लगने लगेगा, कुछ दिनों बाद भूल जाएंगे मैं क्यों कर रहा हूँ ये सब, किसने मुझे पकड़ा दिया, इस रास्ते में कौन ले आया मुझे। तो दोनों चीज अपनी अपनी जगह रखना जरूरी है। तो दैट इज द कि तब आप जो हैं कि आप भगवान को और जो ये है दशम संत का मतलब क्या है, भगवान की डायरेक्ट लीलाएं समझना, तो उसके लिए फिर हम तैयार हैं। हम नहीं तो आप देखें ना, आप और जैसे मान लीजिए हमारे मूवमेंट में ये जो मूवमेंट है चैतन्य महाप्रभु का जो मूवमेंट है, इसमें से सबसे ज्यादा महावदान्य सबसे ज्यादा दयालु पतित पावन कौन है, नित्यानंद प्रभु। उनकी हरकतें देखी कभी, वो अवधूत है, अवधूत का मतलब वो कन्वेंशनली नहीं है, इज एन अनकन्वेंशनल पर्सन, आप समझ रहे। एंड आप उनके भक्त भी हैं या बनना चाहते हैं या उनकी कृपा भी चाहते हैं, तो इसका मतलब सम सॉर्ट ऑफ इंटरेक्शन यू आर लुकिंग फॉर। सो बट देन कैसे, यानी कि जो आपका दायरा है, जो चीज आपको सिखाई गई है, उससे अगर आप ये नतीजे पे पहुंचते हैं कि इससे आगे भी बहुत कुछ है, दैट इज, तो आप सही जा रहे हैं। यानी कि वो आपके ह्यूमिलिटी का भी प्रतीक है, आपके विनम्रता का, कि मुझे ये ऐसा नहीं है नो इट ऑल मैं बन चुका, मुझे सब पता है, नहीं इतना मुझे है और मैं आगे सीखना चाहता हूं और आगे बहुत कुछ है। ये जो भाव है ये भगवान को बहुत आकर्षित करता है, और ये आपको इस, ये जो टेम्परामेंट है, ये जो मानसिकता है, ये आपको उस इनकंसीवेबल को, वो अचिंत्य जो वस्तु है, उस अचिंत्य वस्तु को आप समझ सकते हैं भगवान की कृपा। ये एव एश आत्म विवृणुत तेन लभ्यस्ते न तनुस्वाम, कठोपनिषद में जैसे भगवान कह रहे, नहीं तो ये मुमकिन नहीं है। नायम आत्म प्रवचन न नभ्या न मेधया न बहुनाशुते, वो इस सारा कुछ इसीलिए ये पॉसिबल नहीं इन चीजों से समझना, जरिए है ये, मगर ये अपने आप में पूरे नहीं है। वो इसलिए पूरे नहीं है क्योंकि इसके अंदर नहीं समाते, पर ये जरिया है आपके लिए, मेरे लिए, जो है हम सबके लिए ये जरिया है, मगर ये जरिया मुझे क्या दे रहा है वो तब मैं उसकी एक कसौटी है कि जब मैं ये जजमेंट पैदा कर सकता हूं कि हाँ ये जो मुझे तो मुझे मालूम है, पर इसके आगे इस तरीके से इस चीज इनकंसीवेबल होती है, अचिंत्य होती है। तभी जो वो आता है कि वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञान बुझे, तो वो दूसरे आम आदमी के लिए, कि वो कितना ही इंटेलिजेंट क्यों ना, कितना ही समझदार क्यों ना, कितना ही होनहार क्यों ना हो, उसके समझने की चीज नहीं है, वो नहीं समझ पाएगा बुरा भला, क्योंकि उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि उसके ऊपर कोई अभिशाप है इसका, ऐसा नहीं है, मगर उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसको इस रास्ते आना पड़ेगा, तब आप समझ सकते हैं, तभी आप फर्क कर सकते। जैसे जैसे भगवान श्री कृष्ण, ठीक है ना, वो किसी के लिए, वो किसी को जवाबदार नहीं है, मगर उनके भक्त है वो जवाबदार है, ठीक है, उनकी जवाबदारी। तो ये डिफरेंस, अपनी अपनी हद को ठीक से समझना, ताकि ये समझ सके इस हद के पार क्या है। दैट इज द वो मतलब वो दहलीज है जिसके बाद जो है आप भगवान का रस समझ सकते हैं, आस्वादन भी कर सकते हैं, आप उसका हिस्सा बन सकते हैं, अदरवाइज तो सारा आपके लिए उल्टा सीधा होगा। वो जो पैमाना पूरा भरना जो है वो ये है, देन वी कैन हम भक्तों को ज्यादा पूरा, जिसको हम बुनियादी तौर पर कहते हैं बेनिफिट ऑफ डाउट देना, इससे करते 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 वो जो महाशय यानी कि वो चीज इतना बड़ा हो जाएगा, वो दिल इतना बड़ा हो जाएगा, तो हाँ देन भगवान तब देखते हाँ ये वो हार्ट है, वो दिल है, जिस हृदय है जिस पे जो है गोविंद विश्राम, मैं आराम से बैठ सकता हूँ. सो दैट उसकी शुरुआत ऑब्वियसली इस तरीके से दही नस्मी निता दे, कहाँ तक जाती है ये बात. यहीं पे समाप्त करना चाहेंगे, ऑलमोस्ट टाइम हो गया. किसी का कोई टिप्पणी है, कोई प्रश्न है? जी
हरे कृष्ण. थैंक यू प्रभुजी फॉर दिस लेक्चर. पिता का स्वरूप होता है उसके अकॉर्डिंगली
कर्मणा देव नेत्रे न जंतु देव पते. हाँ, माता पिता का स्वरूप का मतलब यहाँ पर उनकी कदकाठी नहीं है, सिर्फ हो भी सकती है, मगर मेन चीज है माता पिता मतलब कौन है, मतलब 84 लाख योनियों में माता पिता कौन सी योनि है, उसके स्वरूप. जाहिर बात है इंसान के पेट से बंदर का बच्चा नहीं निकलता, तो वो वाली बात है. जी
था कि आप जैसे बता रहे थे कि ये एक जो मैं समझ पाया इसे लाइक लिमिटेड मेंटल जो हमारा पैराडाइम होता है उससे ऊपर उठ के एक इनकंसीवेबल चीज को प्रयास करना, कंसीव करने का, थोड़ा अप्रिशिएट कर पाना. तो जैसे पूरा भागवतम का फ्लो है फ्रॉम द फर्स्ट कैंटो टिल 10th कैंटो, ये इस चीज को कैसे मतलब अचीव.
बहुत अच्छा सवाल है, जैसे पूरा 10th कैंटो से, अगर इसके लिए आप और तफसीली आप देखना चाहें तो एक पूरा प्रेजेंटेशन मैंने देखा है सोत्र स्वामी महाराज का, एक वो है उसके अंदर बुक नाम से वो किताब मिलती है, द बुक उसका नाम यही है. तो उसके अंदर यू विल गेट पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंटेशन इस तरीके से. इट्स लाइक ए मोर लाइक ए गार्लैंड भागवतम, और उसको कई पहलू से उन्होंने ये समझाया है कि कैसे स्टेप बाय स्टेप जस्ट लाइक नंबर्स, जैसे इसके साथ बिल्कुल जैसे होता है ना मैचिंग नंबर्स, इस तरीके से वो चीज़ बताइए कि यहाँ से आप जैसे हम इसको एक मोटा मोटा जैसे हम समझते हैं स्टेप यानी कि चरण और ये है ना, चरण के बाद घुटना ऊपर कम जाते हैं. नाउ स्टेप बाय स्टेप जो अंडरस्टैंडिंग है द फर्स्ट 9 कैंटोज जो कि हर भागवतम के प्रेफेस में प्रभुपाद बता रहे हैं कि फर्स्ट 9 कैंटोज पढ़ने का मकसद ही यही है कि यू बिकम गॉड रियलाइज्ड. अब ये देखिए उसको समझिए, ये शब्द को कई बार जो है अलग अलग तरीके से समझा जाता है, इसका एक रेंज है. गॉड रियलाइज्ड मिनिमम रेंज पे है भगवान को तत्व से जानना, तत्व ज्ञान तत्व तो ठीक है ना. सो विषते तदनंतरम, सो देन तो वो है बेसिक लेवल. हाईएस्ट लेवल सीइंग कृष्ण फेस टू फेस, बट ये यहाँ से वो क्वालिफाई हो जाता है. ऑफ ऑल दोज पीपल जिन्होंने ये भगवान को तत्व से जान लिया है, यही क्वालिफाई करेंगे अकॉर्डिंग टू डिफरेंट ग्रेडेशन कि भगवान को फेस टू फेस देखेंगे भगवान को, ठीक है ना. सो नाउ ये जो पहले नौ स्कंद है, अगर आप इसके अंदर देखें, इसके जो डिस्क्रिप्शन है आप देखें कि जैसे मान लीजिए आप 5th कैंटो है, एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ क्योंकि आपने पूछा है. आप देखेंगे इसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो सारे के सारे कैरेक्टर्स जो है वो बाहर निकलने वाले कैरेक्टर्स हैं. निकलो यहाँ से, 4th भी उत्तानपाद जाओ, ठीक है, जड़ भरत छोड़ो जाओ, ठीक है, ऋषभ देव उनके पहले, ठीक है ना, जाओ, ये जाने वाला कैरेक्टर है, जाओ छोड़ो इस दुनिया को, छोड़ो निकलो. अब आप आओ नेक्स्ट में 6th में गेट इन आओ, है ना, अजामिल सबसे पहले है ना. सो तो ये 8th कैंटो तक चलेगा, आप देखोगे लाइक गजेंद्र, ठीक है, ये वापस वाला सिस्टम है. किस तरीके से आप इसके अंदर यू कैन गेट इन टू दिस कि इस आपने पहले अपने आप को लिबरेट किया एंड देन यू गेट बैक टू दिस लिबरेट अदर्स. 7th कैंटो स्पेसिफिक एग्जाम्पल प्रहलाद महाराज एक्सक्लूसिवली डेडिकेटेड. तो ये प्रोसेसेस है, जैसे मैं पहले भी एक दिन पिछली बार यही बात हुई थी, ये जो डिफरेंट पास्ट टाइम्स है, जो डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, डिफरेंट डिटेल्स हैं, वो डिटेल्स है ही इसलिए। ये तो आदमी अक्सर पूछता है कि यार ये क्यों है, ये एक एक वो है, एक बंदा जा रहा है महर्षि जी से मिलने जा रहे हैं, आप देखोगे वो पूरा चैप्टर यही है कि इधर जंगल है, इधर फूल है, इधर नदी है, इधर पहाड़ है, इधर ये है। नहीं यार, ये भागवतम है कि व्हाई देयर वेस्टिंग टाइम देयर। एक श्लोक में बोल सकते ना, यू कैन स्पीक, सुखदेव गोस्वामी कैन स्पीक समथिंग मोर मीनिंगफुल देन जस्ट सिंपली डिस्क्राइबिंग नेचुरल ब्यूटी क्या, या फिफ्थ कैंटो से आप शुरू हो जाओ, थर्ड में भी है, मगर फिफ्थ से तो ऑनवर्ड्स आप देखोगे आगे तक मोहिनी तक आते आते एक औरत है, वो कैसी दिखती है, उसके बॉडी का एनाटॉमी इतना डिस्क्रिप्शन से कि ऐसी है, हिप्स ऐसे हैं, ब्रेस्ट ऐसे हैं, शक्ल ऐसी है, स्किन ऐसी है। बंदा पढ़ता है यार भागवतम पढ़ रहा हूँ, क्या पढ़ रहा हूँ मैं इसके अंदर, तो क्या समझते हैं क्यों है सारा कुछ, जो आपका सवाल है इसी कि आप ये जो सारे एलिमेंट्स हैं, ये सारे एलिमेंट्स जब आप अप्रिशिएट कर पा रहे, डाइजेस्ट कर पा रहे हैं, इट्स नॉट गेटिंग एजिटेटेड बाय इट, देन दैट इज 10th कैंटो। दिस इज ऑल अबाउट दिस। एक वृंदावन है वो यही है, जंगल है, वन है, पहाड़ है, पानी है, यही और क्या है। वहां आपसे अगर एक पूर्वचिति अप्सरा नहीं संभाली जा रही, तो यहां तो लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम से अभिमान हुए, ये कैसे आप डाइजेस्ट करोगे, तो कंप्लीट ही सी। आप पिछली लीला अवराधे पढ़ते हो, यू अंडरस्टैंड इज गॉड बिकॉज ही इज नॉट लाइक ह्यूमन, एटलीस्ट इतना क्लियर है आपको। आप नरसिंहदेव पढ़ते हो, आपको इतना पता, चलो इंसान तो नहीं है, ये तो पूरा इंसान है। आप कैसे अप्रिशिएट कर, कैसे आप कंफ्यूज नहीं होगे, क्यों आपके मन में डाउट नहीं आएगा। तो दैट इज द प्रोग्रेशन ऑफ भागवतम, कि आपको स्टेप बाय स्टेप वो सारी चीजें जो पॉसिबली हो सकती हैं आपको दिखाते हुए लेके आ रहे हैं, आपको लेके जा रहे हैं, आपको ऐश्वर्य दिखा रहे हैं, स्वर्ग लोक का ऐश्वर्य यूं है, ऐसा है, कि क्यों, क्योंकि द्वारका इज ऑल अबाउट इट। तो आप हर चीज को जब आप उसको डाइजेस्ट करके यू आर रेडी फॉर दिस। तो मैं समझता हूँ इस तरीके से भागवतम जो है आपके हर उस नेसेसिटी को एड्रेस करती है। कई बार लोग पूछते भी, जैसे आप अगर जगन्नाथ मंदिर में जाएंगे पुरी में, आप देखेंगे जगन्नाथ मंदिर में भी जो है वो है नक्काशियाँ हैं, वो ऐसी हैं कि औरतें और मर्द जो हैं वो ऐसे क्लोजली एसोसिएट कर रहे हैं, देवी देवता हैं। और बंदा पूछता है यार मंदिर है क्या, ये मंदिर नहीं है, वो आपकी ट्रेनिंग है, वो आपकी ट्रेनिंग है, वो आपके लस्ट को जो है काम कृष्णार्पण है, आप उसको लगाना सीखो। आप क्या, अगर आप ये सब कुछ ही छोड़ दोगे, काम क्रोध लोभ यही तो भरा हुआ है, क्या हमारे पास लगाओगे क्या, मन मना मनो भक्त जो है वो क्या है, मन में क्या, ये सारा कुछ है, तो भगवान कह रहे हैं यही लगा दो मुझे जो है। सो मन का मतलब तो कोई एलिमेंट तो नहीं है, वो एलिमेंट तो डेड है वो। तो दिस इंटेंशन और इंटेंशन जो कि मिक्स्ड है इन छह चीजों से, इसी के साथ लगा दो, तो वो भागवतम आपको इसके लिए तैयार करता है। 9 कैंटोस के बाद देन यू आर, एंड प्रभुपाद कह रहे हैं श्योर टू बिकम गॉड रियलाइज्ड, ऐसा नहीं है, श्योर टू बिकम गॉड रियलाइज्ड। मैनिफेस्ट हो रही है, नहीं मैनिफेस्ट हो रही है, वो टाइम की बात होती है, कई बार कोई चीज टाइम से मैनिफेस्ट होती है। ठीक जी, श्रीकर्ता वो जी जाहिरी बात है, देखिए ये जो है ना बहुत अच्छा सवाल है। एक्चुअली ये यूजेबिलिटी के हिसाब से नहीं है, प्रभु जी का सवाल ये है कि जैसे इस तात्पर्य में भी है कि पहले मन की बात करिए प्रभुपाद ने, उसके बाद इंद्रियों की बात करिए। तो अक्सर लोग यही सवाल पूछते हैं कि मन के द्वारा इंद्रियों को लगाएं कि इंद्रियों के द्वारा मन को लगाएं, तो क्या 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 होता है, कैसे क्या है, क्या प्रोसेस क्या है। दरअसल यहाँ पर जब तात्पर्य लिखा जा रहा है वो इस हिसाब से नहीं लिखा गया है कि प्रोसेस क्या है, ये लिखा गया है सुपीरियरिटी किसकी है। आप सीधा 12वें भागवत गीता के 12वें अध्याय में चले जाओ, आप देखो कहाँ से शुरू हुआ है, मन अध्यास्त, सबसे पहले मन से शुरू हुआ। तो इसीलिए तो प्रभुपाद उसी सीक्वेंस को, जिस सीक्वेंस पे भगवान ने चीजों को पेश किया उसी सीक्वेंस में प्रभुपाद पेश कर रहे हैं। तो पहले मन, अगर आप मन लगा सकते हो, ये बिकॉज दिस इज इन्फीरियर, अगर आप मन नहीं लगा सकते तो आप शरीर के द्वारा करो तो इन्फीरियर है, क्योंकि मन के द्वारा हो जाता है तो शरीर आ जाता है अपने आप, इस वजह से। पर शरीर के द्वारा कर लेने से मन आ जाता है ऐसा नहीं है, उसके बाद आपको चौंकाना रहना पड़ेगा। तो अभी आप है ना, ऐसे भी ये सारा कुछ तो कोई, ये कोई क्रिया नहीं है कि आप ऐसा कर लो तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके अंदर आपका क्रिया करने के बाद आपका वो वेटिंग प्रोसेस है, लेट कृष्णा रिस्पॉन्ड एंड देन वो काम करते हैं। मैंने जो भी किया उसके 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 फलस्वरूप लेट सी कि कृष्णा क्या, कृष्णा फेवरेबली रिस्पॉन्स करते हैं तभी जाके मेरा वो आगे जाता है, नहीं तो नहीं क्रिया है, नहीं तो आप भगवान को नहीं बांध सकते उससे क्रिया से। इस वजह से प्रोसेस माइंड सुपीरियर है। और ऐसा नहीं मन मन नहीं लगाया जा सकता, मन लगाया जा सकता है, क्यों नहीं लगाया जा सकता। हाँ आप ये कहेंगे 100% तो वो तो शरीर भी नहीं लगाया जा सकता। कई बार भक्तों को जो है मतलब हमारे हम लोगों को ये कई बार होता भी है कि मन तो नहीं लगेगा। अरे 100% नहीं लगेगा, जितना लगता है उतना तो लगाओ, जितना तो ये ऐसे ही है, ऐसे ही है, जितना लगा सकते हो उतना लगा दो, बाद में और लग जाएगा। ठीक है जी माता जी, आगे और सुरक्षित रख सके कृष्ण की शिक्षा रहे, यो सकाले योग नष्ट परंतपा ना हो। मेरी ये समझ है, व्यक्तिगत यही रहे हैं। मैं समझता हूँ, अदरवाइज प्रचारक करता क्या है। नहीं 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 नहीं, हम नहीं कहते कि हम सीधा भक्ति योग करें इस तरीके से। वो कर्मयोग भक्ति योग का हिस्सा है, कर्मयोग बनता ही भक्ति योग की वजह से। हाँ हाँ, तो आप उसको कुछ भी आप कहीं से भी बात करेंगे तो कर्मयोग, कोई भी योग, योग का मतलब है जब तक उसके अंदर भक्ति नहीं है वो योग नहीं बनेगा, बनेगा ही नहीं वो। तो इसीलिए तो वो ऐसा नहीं कि हम कहते हैं कि आप डायरेक्ट भक्ति योग करें, हम नहीं कह रहे, भगवान कह रहे पहली बात। और दूसरा जो है, आप किसी भी रास्ते से आप आ रहे हो, आपको भक्ति उसके अंदर भक्ति डालनी पड़ेगी। तो ये है बस, और ऐसा हम नहीं कह रहे कि आप डायरेक्टली ये करो। हम ये नहीं कह रहे कि अगर ऐसा ही हमारा, अगर यही हमारा प्रोसेस होता नहीं तो फिर हमारी भागवत की तो शुरू ही 7वें अध्याय से होती। जैसे कुछ संस्थाएं हैं ना जो पहले 6 अध्याय पब्लिश करते, 7वां अध्याय पब्लिश करते ही नहीं, तो हम भी वहां से शुरू करते कि पहले 6 आप वहां से बढ़ाओ, हम तो 7वें से शुरू करते। इस तरह नहीं, हम नहीं कहते कि आप डायरेक्ट भक्ति, ये प्रोसेस है। भक्ति तो छोड़े ना, आप देखो ना यहाँ पर भी, जैसे देखो ये आप शरीर नहीं हो आत्मा, उसमें क्या भक्ति है। भक्ति का मतलब क्या, भक्ति का मतलब 3 चीज है ना, भगवान, प्रोसेस, भक्ति और भक्त। तो यहाँ तो 3ों में से कोई मौजूद नहीं है। तो इस तरह नहीं, भगवान ने भी इस तरह से शुरू किया। भगवान पहले सेल्फ, आत्मज्ञान पहले देर देनस्मी। तो इसलिए ऐसा नहीं, हम भी नहीं कहते भक्ति। देखिए भक्ति आसान जरूर है मगर सस्ता नहीं है कि हर कोई आरा गया नथु वगैरह छलांग मार के आ जाएगा इसके अंदर, नहीं। ये तो पाथ ऑफ ग्रेस, ये यानी कि एक एक, एक ये कृपा से लाभ की हुई है ना। तो और ग्रेस है तो इसलिए ग्रेसफुली इस रास्ते में आप आया जा सकता है, आ जाता है। ठीक है, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। ताई गोष्णनाथ में मनंदे।